यत्त्वानुवर्तन्ते तद्धाम परब्रह्म।
इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है, है ना। और भगवान कहते हैं कि जब भी कोई मेरे धाम में आ जाता है तो फिर वापस भौतिक दुनिया में नहीं जाता। लेकिन हम लोगों ने आज के टिकट निकाल के रख दिए वापस जाने के, रिटर्न टिकट्स। ऐसा आइडियली नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी क्या करें, अपना घर परिवार है, सब करना पड़ता है। इवन ब्रह्मचारी संन्यासी की भी वापस जाने की टिकट्स है तो ये दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक दुनिया ही है, ये वैकुंठ ही है। लेकिन हमें अभी थोड़ा टाइम लगा समझने के लिए, तो कोई बात नहीं। हमारा इतना सौभाग्य है कि हमारे गुरुवर्य श्रील प्रभुपाद और सारे वैष्णव आचार्य की कृपा से हमें इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने की एक क्या बोलते परमिशन मिली है, है ना। तो आप तो सब अलग अलग जगह से घूम के आए हैं, तो मुझे जो बोला गया है जो दो चार चीज़ें उसके बारे में मैं 45 मिनट्स में बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहला है चक्र तीर्थ, जो भी अभी जगह जो है चक्र तीर्थ वाली जगह ही है। फिर गुंडीचा टेम्पल, इंद्रदुम्न सरोवर और नरसिंह मंदिर, बेड़ी हनुमान टेम्पल। ये मंदिर के बारे में हम लोग दो दो मिनट में चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग गुंडीचा जो सुंदराचल है, जो नॉन डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन, जगन्नाथपुरी एक ऐसी जगह है, यहाँ पर द्वारका और वृंदावन एक साथ है, है ना। कभी कभी ऐसा होता है द्वारका में गया तो आपका मूड चेंज हो जाएगा, वृंदावन जाएगा तो मूड चेंज हो जाएगा। एक बार पुजारी जी जगन्नाथ जी का ड्रेसिंग कर रहे थे और ड्रेसिंग करते समय उन्होंने वृंदावन के मूड में जगन्नाथ जी का ड्रेसिंग किया, तो राजा आए और पुजारी को कहने लगे, अरे जगन्नाथ जी द्वारकाधीश है, बड़े ऐश्वर्यशाली है वो, आप ये वृंदावन वाला ड्रेसिंग क्यों किए। तो पुजारी जी कुछ बोले नहीं, लेकिन रात में जगन्नाथ जी सपने में आए हैं जगन्नाथ जी के राजा के, और कहा कि अरे मैं ये जगन्नाथपुरी में मेरा दोनों धाम यही एक साथ ही है, लेकिन वृंदावन प्रोमिनेंट है जो मेरा मूड जो है, भले ही द्वारका और जगन्नाथ, द्वारका एंड वृंदावन दोनों एक साथ है, लेकिन मेरा मूड वृंदावन का ज्यादा है। तो जो मेन टेम्पल है वो भी वृंदावन ही है, लेकिन एक्सटर्नली लीला में देखा जाए तो वो द्वारका से कंसिडर किया जाता है। और गुंडीचा जिसको सुंदराचल कहते हैं वो वृंदावन है, इसलिए तो भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकालकर वृंदावन में प्रवेश करते हैं, गुंडीचा में प्रवेश करते हैं। तो अब हम गुंडीचा में है, मतलब वृंदावन के अंदर है। तो गुंडीचा मंदिर के बाजू में ही आपको एक मंदिर दिखेगा, नरसिंह टेम्पल, आप सब दर्शन करके आए। वहां पर दो है नरसिंह देव के विग्रह, शांत नरसिंह और पीछे है उग्र नरसिंह। तो पहले शांत नगर जी नरसिंह बहुत सुंदरता से दर्शन दे रहे और पीछे उग्र नरसिंह है, और वो बहुत एंशियंट विग्रह है। इवन इंद्रदुम्न महाराज जब आए थे जगन्नाथपुरी में, तो सबसे पहले उन्होंने नरसिंह देव का ही पूरी स्थापना की और उनके विग्रह की अर्चना की, उनकी पूजा वर्षा की। और इंद्रदुम्न नरसिंह मंदिर के बाजू में ही आपको इंद्रदुम्न सरोवर दिखेगा, अभी हम लोग जाएंगे वहां पर, जाकर आएंगे। जय हो आप आगे है दोस्त हमसे, वेरी गुड। तो इंद्रदुम्न सरोवर की लीला ऐसी है, जब इंद्रदुम्न महाराज जी ने अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने सोचा, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने प्रण ले लिया, तो उसमें उन्होंने एक ऐसा महल बनाया था जिसमें यज्ञ होगा, सारे देवी देवताओं को बुलाया, और वो जो हॉल है, हॉल की जो हाइट है वो 6 किलोमीटर लिखा है शास्त्र में, 6 किलोमीटर मतलब 1500 स्टोरी बिल्डिंग, इतने विशाल उन्होंने वो महल बनाया था अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। और इंद्र वगैरह सारे देवताओं को इनवाइट किया, सारे देवता आ गए, भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान ने कहा, इंद्रदुम्न महाराज आप चिंता मत करो, मैं अभी इस कलयुग में दो रूप में आऊंगा, जैसे राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे, पहला तो है ऊड और दूसरा है वाटर, वाटर है गंगा नदी और ऊड है जगन्नाथ भगवान। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी कुछ दिनों के बाद एक लॉग, एक वुडन लॉग ऐसा फ्लोट करते हुए आएगा ओशन से, और आप उसे जिगरा बना देना। तो जो वुडन लॉग बहते बहते जब सबसे पहले जमीन को हिट हुआ यहाँ पर, तो वो जगह है चक्र तीर्थ। वहीं पे भगवान जगन्नाथ जी का चक्र एक बार निकल के, सुदर्शन चक्र वहां से निकल के यही जगह पे आया था, तो उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी की लीला के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करना शुरू कर दिया, और अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने हजारों लाखों गायों को एक जगह पर रखा ब्राह्मणों को दान देने के लिए। तो सारी गायें जब एक जगह पर खड़ी हो गई, तो उनके खुरों से, उनके पैरों से वहां पर बहुत बड़ा विशाल एक पौंड तैयार हो गया, और उसी पौंड में गाय का गोमूत्र और गोबर जमा हो गया, और भी बाद में वो बहुत बड़ा एक पवित्र स्थान माना गया है, जहाँ वर्ल्ड के सारे तीर्थ स्थान इंद्रदुम्न सरोवर में रिजाइड करते हैं। और इंद्रदुम्न सरोवर में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की जो वाटर फ्लैशेस, एक दूसरे पर पानी फेंकने की जो लीला है वो हुई। वो लीला हमारे दामोदर प्रभु जी आपको बताएंगे, इसलिए मैं वो पार्ट नहीं टच कर रहा हूँ उसे, तो उसके बाद दामोदर जी का प्रवचन होगा। तो इंद्रदुम्न सरोवर के बाद बेड़ी हनुमान टेम्पल है। यहाँ पर जगन्नाथपुरी में बहुत सारे हनुमान जी के मंदिर है। अगर आप देखेंगे जगन्नाथ जी के नॉर्थ गेट में आपको तपस्वी हनुमान जी का मंदिर दिखेगा, तो तपस्वी हनुमान जी, उनके हाथों में चार चक्र है, तो वो जगन्नाथ जी मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए तपस्वी हनुमान जी है। जगन्नाथ जी के वेस्टर्न गेट में आपको वर्गी हनुमान, वेस्टर्न गेट से और आगे वेस्टर्न गेट के लग के ही आपको कानपट हनुमान मिलेंगे। कानपट हनुमान इसीलिए है कि अभी समुद्र तो भगवान जगन्नाथ जी के ससुर है ना, लक्ष्मी माता उनकी बेटी है, तो भगवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद समुद्र जी हमेशा अपने बेटी को मिलने के लिए हमेशा आना चाहते थे पास में, तो आवाज भी बहुत होता था। तो जगन्नाथ जी ने कहा है तुम मेरे ससुर हो ठीक है, लेकिन आवाज नहीं करना, मेरी लीला में डिस्टर्ब होता है टेम्पल में। तो समुद्र जी ने कहा हाँ ठीक है, देखिए कोई बात नहीं। तो उन्होंने एंश्योर करने के लिए हनुमान जी को कहा तुम यहाँ बैठो और कान लगा के ऐसे रखो, आवाज ज्यादा आ गए तो हम लोग बोलते ना कंट्रोलिंग रखते ना वो साउंड का, अगर आवाज ज्यादा कम होता है, आवाज ज्यादा आ रहा है तो काम तुम कर देना, कम ज्यादा करते रहना तुम। इसलिए हनुमान जी वहां ऐसे कान लगा के बैठे हैं, तो कानपट हनुमान है। और वही कानपट हनुमान के और आगे पीछे जाएंगे थोड़ा, तो वहां पर वर्गीय हनुमान मिलेगा आपको, कि पहले महाराष्ट्रियन लोग घोड़े से पूरा चलते थे और अलग अलग कॉन्कर करते थे प्रदेश को, तो वहां जगन्नाथ जी के पास में आते थे घोड़े की आवाज से बहुत तकलीफ होती थी। तो भगवान ने, तो बाद में भक्तों ने वहां पर एक हनुमान जी का विग्रह रख दिया, तो सारे वो महाराष्ट्रियन लोग आते थे तो वो प्रणाम करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए दूर से जाते थे। और एक और भगवान जी का, हनुमान जी का मंदिर है इंद्रदुम्न सरोवर के पास, वो है पंचमुखी हनुमान। वो पंचमुखी हनुमान बहुत ही स्पेशल है। वहां पर वो पंचमुख में वराह, नरसिंह, हनुमान, हयग्रीव और गरुड़ इन पांच विग्रहों के एक साथ हैं। इसलिए हनुमान जी ना, अगर किसी को वास्तु दोष, जीवन के और कुछ प्रॉब्लम, कुछ ब्लैक आर्ट्स, ये वो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है ना, हनुमान जी की पूजा करो। ये मैं कोई कर्मकांड नहीं बता रहा हूँ कि हनुमान जी भक्त है ना, तो हनुमान जी जहाँ होते हैं वहाँ सक्सेस गारंटी है। अरे हनुमान, रावण ने शनिदेव को कैप्चर करके अपने पैलेस में बंद कर दिया था। अब जितनी भी ग्रहों की हमको प्रॉब्लम है ना, कभी बोलते ना अच्छा वह हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं थोड़ा ग्रह की शांति करो, ये करो वो करो, ये सारे ग्रह रावण ने बंद करके रखे थे अपने पैलेस में, और स्पेशली शनि को तो उल्टा लटका के रखा था। हनुमान जी जब गए लंका जलाने के लिए, तो वहां से एक पैलेस से क्रंदन आने लगा, जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। हनुमान जी सोचा कौन है ये, जाकर देखा सारे ग्रह जितने भी प्लैनेट्स है सबको बंद करके रखा। हनुमान जी ने सबको छोड़ दिया, सब कुछ छुटका कर दिया, सबको एस्केप, मतलब क्या उसको उनकी ये कर दिया सुरक्षा। सोचिए जो ग्रह हमको बांध सकते हैं उनको हनुमान जी ने छोड़वा दिया, तो हमको छोड़ नहीं सकते क्या वो? और स्पेशली शनिदेव, जब शनिदेव को छोड़ दिया, हनुमान जी को कहा शनिदेव जी ने, जो भी तुम्हारा भक्त रहेगा मैं उसे टच नहीं करूंगा। तो इसलिए हनुमान जी वहां पर पंचमुखी विग्रह में, सिर्फ कभी कभी लोग देखते हैं आप साउथ के गेट की तरफ दरवाजा रहता है उनका, तो वहां पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाते हैं ना। लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और एक और मंदिर है बेड़ी हनुमान। तो ये जो बेड़ी हनुमान है, भगवान ने उनको रखा था कि देखो ये ओशंस के लहरें कभी कभी मंदिर में आती है, तुम यहाँ रहो और यहाँ से वे उसको देखते रहो। तो बहुत देर ऐसे चलता रहा, हनुमान जी देखते रहे, लेकिन उनको क्या है ना, एक बार अयोध्या चले गए, वहाँ पर फीस चल रही थी, अयोध्या गए, खाकर आ गए और उतने में समुद्र अंदर आ गए अपनी बेटी से मिलने के लिए, लक्ष्मी देवी से। जगन्नाथ जी ने देखा हनुमान कहाँ है, किसी ने कहा अयोध्या गया है। जगन्नाथ जी अयोध्या में गए, उठाया हनुमान जी को, वापस लेके आए और बांध दिए अपने प्रेम से बेड़ी, बांध दिए और कहा हनुमान अबे आज से यहां से हिलना नहीं। क्यों गए थे तुम, मैंने तुमको सेवा बताई थी, यहां से रहो। हनुमान जी ने कहा क्या कहो प्रभु, ये लोग हमेशा मुझे खिचड़ी खिलाते सिर्फ कुछ अच्छा भोग वगैरह देते नहीं। तो जगन्नाथ जी ने अपने पांडव को बुलाया, देखो जो भी मुझे सारा भोग लगता हो मेरे जो हनुमान है उनको दिया करो। इसलिए तब से लेकर अभी बहुत स्पेशल पे लड्डूज उनको भोग लगते हैं हनुमान जी को, बेड़ी हनुमान जी को। और उसके बाद है गुंडीचा मंदिर। ये जो गुंडीचा टेम्पल, एक थोड़ा घड़ी रखेंगे ना पता चलेगा टाइम। ये जो गुंडीचा है, ये मंदिर का नाम गुंडीचा इसलिए पड़ा है कि जो इंद्रद्युम्न महाराज है उनकी जो पत्नी थी बहुत ही भगवान की प्रिय भक्त थी, भगवान को बहुत प्रेम करती थी। तो उनके लिए भगवान इंद्रद्युम्न जी ने इंद्रद्युम्न ये अपना ये टेम्पल बनाया और अपनी पत्नी का नाम दिया गुंडीचा। उसको सुंदराचल भी कहते हैं जो वृंदावन से अभिन्न है। तो अभी हम लोग एक वृंदावन का भजन गाएंगे जिसमें हम लोग थोड़ा वृंदावन का वर्णन करेंगे। इसके बोल है राधा कुंड तट कुंज कुटीर।
Thank you.
वृंदावन भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं, वैकुंठ प्लैनेट्स और वृंदावन इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन सारे वैकुंठ प्लैनेट्स, सारे मटेरियल वर्ल्ड्स के हेवनली प्लैनेट्स, सबकी सुंदरता, सारे ऑपुलेंस एक साथ करो, लेकिन फिर भी वो वृंदावन के एक डस्ट का एक पार्टिकल, एक छोटा सा जो कण है, उसके साथ भी मैच नहीं कर सकता। वृंदावन हैज ऑल द ऑपुलेंसेस ऑफ वैकुंठ प्लैनेट्स। वृंदावन में, वृंदावन वैकुंठ प्लैनेट्स में जितने ऐश्वर्य है सारे के सारे वृंदावन में है, लेकिन ओवरलोडेड विद स्वीटनेस। जो वृंदावन है वो स्वीटनेस से ओवरलोडेड है, ऑन स्प्रिंकल्ड विद कॉन्जुगल लव, और उसके ऊपर ऐसा स्प्रिंकल किया हुआ है भगवान का जो प्रेम है, इंटीमसी, उनके भक्तों के साथ जो लीलाएं हैं, यही डिफरेंस करती है वैकुंठ प्लैनेट्स और गोलोक वृंदावन में। भगवान वही है, वैकुंठ में वही है, गोलोक में भी वही है, लेकिन कृष्ण की एक स्पेशलिटी है, उनके भक्तों के साथ जो लीला है वो बहुत स्पेशल है। कैन यू इमेजिन, विष्णु, अब कुछ विष्णु एंड कृष्ण देयर इज नो डिफरेंस, दोनों एक ही साथ है, एक ही है, लेकिन विष्णु के कंधे के ऊपर कोई हाथ डालेगा क्या? चलो तो विष्णु भगवान घूम के आते थोड़ा सा थोड़ा हाथ में घूमते थोड़ा करके आते हैं, है ना। सीतामा सुदामा मधुमंगल सो नेचुरल फॉर देम, एकदम हाथ में डाल के हाँ चलो घूम के आते हैं, भगवान को मिलते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। समटाइम दे चैलेंज हिम फॉर रेस्लिंग, कभी कभी तो सारे जो भक्त है उनके रेस्लिंग के लिए भी चैलेंज करते हैं। तो ये जो स्वीटनेस है और इंटीमेसी है भगवान की वृंदावन में, वो बहुत स्पेशल है, जो आपको वैकुंठ में नहीं मिलेगी। और जो गोलोक वृंदावन है, इसमें जो मेन मेन पर्सनालिटीज है वो है गोवर्धन पर्वत जमुना तीरा, तो ये जो गोवर्धन पर्वत है ये भगवान के सखा भी है, मित्र भी है, सर्वेंट भी है, सब रसा में सेवा करते हैं। जैसे बलराम जी भगवान की सारे रस में सेवा करते हैं, गोवर्धन भी सारे रस में सेवा करते हैं। गोवर्धन अपने केव्स, वाटरफॉल्स और उनके जो शिलाज है, इनके भगवान की और भक्तों की सेवा करते हैं। उनका इतने सुंदर सुंदर घास है गोवर्धन के ऊपर, भगवान की गायें चराने के लिए रहते हैं। और जो गोवर्धन का पानी है, वाटरफॉल्स का, झरने का जो पानी है, वो नेक्टर से भी ज्यादा मधुर है। और स्पेशली गोवर्धन इज सो एक्सपर्ट इन असिस्टिंग कृष्णा इन हिज लीला। कभी कभी गोवर्धन की शिलाएं है ना, वो कैसे होती है, अगर श्री राधा और कृष्ण दोनों अगर गोवर्धन में बैठे हैं और बलराम जी और उनके जो साथी आ रहे हैं, तो बलराम जी देखते हैं कि गोवर्धन शिला के ऊपर सफायर एंड गोल्ड, मतलब ब्लू कलर का और गोल्डन कलर के अगर फुटप्रिंट्स दिखे, तो बलराम जी अपना मार्क चेंज कर देते बलराम जी बोलते कोई बात नहीं, मेरा जो भाई है अभी कई और जगह पे है तो बलराम जी दूसरा अपना रास्ता ले लेते। और जब कभी भगवान कृष्ण बलराम जी और अपने भक्तों के साथ, सखाओं के साथ होते हैं, तो श्री राधा और सारी गोपियां देखती हैं कि भगवान के ब्लू कलर के फुटप्रिंट्स है गोवर्धन के ऊपर और साइड में व्हाइट भी है तो बलराम, श्री राधा बोलती है अभी बलराम जी के साथ है भगवान, तो वो अपनी दिशा चेंज करते हैं। तो गोवर्धन जी इतने स्पेशल है, एक्चुअली गोवर्धन के ऊपर इतने फ्रूट ट्रीज है, इतने फ्लावर्स है, सारे भगवान की सेवा के लिए है। और कभी कभी पूरे गोवर्धन के ऊपर सैंडलवुड ट्रीज भी है, जिससे पूरा फ्रेग्रेंस एरोमेटिक हो जाए, पूरी दुनिया जो एटमॉस्फेयर है वो पूरे एरोमेटिक हो जाए। और उसमें कभी कभी सांप भी होते हैं, तो कोई कहेगा वृंदावन में सांप कहां से आए, पहले बात तो सांप होते नहीं है, अगर है तो विषैले नहीं होते, तो वो भी भगवान की सेवा में लगते हैं। कोई बोले सांप कैसे है, तो मैं विश्वनाथ चंद्र ठाकुर को पढ़ रहा था कि सांप कैसे सेवा करते हैं भगवान की। कृष्ण इतने मधुर है ना, सो स्वीट, उनकी एक एक लीला ऐसे मधुर है। एक बार वो गोपी के साथ, एक गोपी के साथ बात कर रहे थे, वो गोपी बहुत गुस्सा हो गए, हैं आपसे बात नहीं करना है, उन्होंने रिजेक्ट किया कृष्ण को। तो कृष्ण ने कहा क्या करूं मैं अभी, तो कृष्ण निकल गए यहां से और तुरंत गोवर्धन के ऊपर एक सांप आ गया और सांप ने दंश कर दिया कृष्ण को। एक्चुअली कृष्ण की अरेंजमेंट थी, वो गोवर्धन की अरेंजमेंट थी। कृष्ण रोते रोते गोपी के पास गए, गोपी ने कहा क्या हुआ, मुझे सांप ने दस दिया। कृष्णा किसी का अगर सिंपति लेनी है ना, इसमें सबसे एक्सपर्ट है। हम कभी कभी देखते ना बच्चे लोग कभी कभी ऐसे बिहेवियर करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा चलते हैं, ऐसा कि माता पिता से लेकर सारे बच्चे लोग बोलते हैं हाँ मेरा बेटा, गले से लगा लेते हैं ना। सोचो वो तो इनोसेंस जो है, भगवान ओरिजिन है उसके। अगर किसी को इनोसेंस अगर दिखाना भी है तो भगवान से ज्यादा कौन कर सकता है। तो भगवान ऐसे रोते रोते आए तो गोपी तुरंत उनको एम्ब्रेस करती है, हाँ ठीक है ठीक है, मेरी वजह से आपको सांप काटा, अगर अब मैंने आपको रिजेक्ट नहीं किया था आप सीधा चले जाते, आप इस तरफ चले गए, मेरी वजह से आपको सांप ने काटा। तो भगवान सिर्फ अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए सारा अरेंजमेंट करते हैं, और गोवर्धन जी उसमें बहुत ही एक्सपर्ट है। एक बार भगवान कृष्ण श्री राधा जी के साथ बैठे थे, उतने में जटिला आ गई। जटिला ने देखा, दूर से देखा, राधा रानी के पास में कोई बैठा है क्या? तो दूर से सिर्फ दिख रहा था, ब्लू कलर कुछ तो दिख रहा है। तो पास में आकर देखी तो श्री राधा जी डर गए, अभी क्या करे, तो सीधा अभी खुला खुला दिख रहा है अभी। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना। कभी बोले तेरे हम है ना बोलते ना, कृष्ण बोलते मैं हूं ना। कृष्ण ने क्या किया, तो कैमोफ्लाज, मानो कैमोफ्लाज, जैसे जैसे सीजन चेंज होता है तो पंछी और गिरगिट वगैरह जो अपने कलर चेंज कर देते हैं ना, कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण के पीछे गोवर्धन शिला थी, तो गोवर्धन शिला का जो कलर है उसी को अपना बॉडी का कलर बना दिया। तो जटिला आ गई, अच्छा श्री राधा गोवर्धन में वो फूल निकाल ले आई है, यहां से फूल लेने के लिए आई है। कृष्ण बाजू में बैठे हैं, राधा रानी भी देख रहे हैं, लेकिन जटिला को देखा क्योंकि वो गोवर्धन शिला का और कृष्ण का कलर दोनों एक जैसे हो गया ना, तो इसलिए वो पहचान नहीं पाई कि ये कृष्ण है कि गोवर्धन शिला है। तो इस प्रकार से गोवर्धन जी भगवान की लीला में बहुत मदद करते हैं। पूरा वृंदावन और वृंदावन का जो फ्लैग है वो है गोवर्धन। नंद महाराज, नंद महाराज का जो नंद गांव है वो है उसका क्राउन। नंद महाराज इतने प्रेमी है, ही इज ऑस्पिशियस पर्सनिफाइड, हैप्पीनेस पर्सनिफाइड। नंद महाराज सुख प्रेम और शुभधा के मूर्तिमंत रूप है, और जो उनकी डिवाइन पत्नी है यशोदा माई, सी इज अ क्रीपर ऑफ लव एंड केयर। विश्वनाथ शेखर ठाकुर इतना सुंदर से लिखते हैं कि यशोदा माई ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो प्रेम और केयरिंग, दूसरे की केयर करना इसका एक मूर्तिमंत रूप है। सी इज अ क्रीपर ऑफ लव एंड केयर। एंड व्हाट इज द फ्लावर ऑफ दैट क्रीपर? हाँ, ब्लू जेम। क्रीपर से फूल निकलते हैं ना, तो ये जो लव एंड केयर की जो क्रीपर है यशोदा माई, उसमें से उनका जो ब्लू जेम कृष्ण कन्हैया है उनका पुत्र है। तो इस प्रकार से नंद महाराज यशोदा माई और गोपियों के क्या कहने, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये सारी गोपियां दे आर सो डिवाइन, सो डेडिकेटेड, कंप्लीटली सरेंडर्ड टू कृष्णा, देयर बॉडीज आर डिवाइन एंड एफुलजेंट, और इतने एफुलजेंट है विश्वनाथ शेखर ठाकुर लिखते हैं कि उनके टो नेल से, पैर का जो अंगूठा है वहां से तो हजारों लाखों किरणें बाहर निकलती है, उसमें से एक किरण भी मिलियंस ऑफ मून्स को कवर कर सकती है, इतने वो सुंदर है और भगवान के शरणागत है। और ये सारा जो गोपी जी का प्रेम है कृष्ण के प्रति, इस प्रेम के जो गार्डन में, उसमें जो जो फूल निकलता है, दैट इज श्री राधा, सी इज द सोर्स। भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं उमा रमा सत्या चंद्रा रुक्मिणी पार्वती, ऑल दीज डिवाइन लेडीज, उनमें जो भी प्रेम है, तेज है, डिवाइननेस है, वो सारा श्री राधा से बोरो किया हुआ है। उनसे वो ये लेते हैं, वो कुछ देर के लिए आप देंगे क्या थोड़ा, हम राधा दे, कोई बात नहीं ले जाओ। तो इस प्रकार से ये सारे ब्रजवासी, और इसमें आगे आता है जमुना का वर्णन, राधा कुंड का। जो डिवोटीज है, कथा गानम नाट्यम गगनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च सयत्र क्षीराब्दि। हाँ, तो ये वृंदावन में कोई बोलता नहीं है, ऐसे एक शब्द नहीं बोलता है, गाते हैं लोग। वो चलते नहीं है, डांस करते हैं, वो पानी नहीं पीते, अमृत से भी ज्यादा मीठा रस पीते हैं। अगर वृंदावन में आप देखते हैं कि इतनी इंटीमेसी है कि कभी कभी कृष्णा झूठ भी बोलते हैं, एक दूसरे को गाली भी देते हैं लेकिन वो गाली जो है गलत बोलना, ये हम जैसे साधारण वर्ड्स नहीं है। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी लिखते हैं, कभी कभी वो लोग यूज करते वर्ड खल, खल का क्या है, खलनायक बोलते ना हम लोग, लेकिन वो राक्षस नहीं, वो है एक लविंग पर्सनैलिटी। तो वहां पर खल मतलब कोई राक्षस नहीं, एक लविंग पर्सनैलिटी होती है। और वहां उसमें आदमी लिखते हैं कि मल, मल का अर्थ क्या है, कुछ प्रॉब्लम होना लाइफ में वगैरह, लेकिन यहां पर वृंदावन में मल का अर्थ जो है वो है एक डिविनिटी। कभी कभी वो यूज करते हैं वर्ड प्रदोष, प्रदोष का अर्थ है अगर साधारण मीनिंग लो तो उसका अर्थ होता है दोष, फॉल्ट्स। लेकिन वृंदावन में सारे लोग प्रदोष चंद्रमा के लिए यूज करते हैं। कभी कभी तो ये वर्ड यूज करते हैं मोक्ष, लेकिन मोक्ष का अर्थ है थीफ, चोर, चोर के लिए मोक्ष कहते हैं ना हम लोग, लेकिन वृंदावन में वो मोक्ष को एक ब्यूटीफुल बॉय समझते हैं वो लोग। क्रिकेटनेस, क्रिकेटनेस का मतलब है कुछ पॉलिटिकल बिहेवियर होना, कुछ अजीब सा माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स होना, उसको क्रिकेटनेस बोलते हैं। लेकिन वृंदावन में क्रिकेटनेस को जमुना का जो फ्लो है, जैसे सरपंच चलता है ना स्पाइरल ऐसे, तो जमुना जैसे बहती उसको वो क्रिकेटनेस यूज करते हैं। कभी कभी हम लोग यूज करते हैं स्मॉलनेस, स्मॉलनेस का मतलब छोटा, कुछ आपके जीवन में कुछ तो लैकिंग होगा तब हम स्मॉलनेस बोलते हैं। वृंदावन में स्मॉलनेस वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, स्लेंडर वेस्ट जो कमर छोटी होती है, पतली कमर, उसको वो स्मॉलनेस वर्ड यूज करते हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन में जो सारे भक्त है वो भगवान की सेवा में रहते हैं। और यहां पर बाद में वर्णन आता है, जमुना माई प्लीज लिसन केयरफुली, सो स्वीट, भगवान कृष्ण के लीला में गोवर्धन जमुना, दे आर द मोस्ट इंटीमेट एसोसिएट्स ऑफ कृष्णा। श्री राधा और कृष्ण के बाद में जो इंटीमेट लोग है ललिता विशाखा गोवर्धन जमुना। जमुना माई वाई सी फ्लोस ऑलवेज क्रिकेट, वो ऐसे 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 क्यों बहती है, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जहां जहां कृष्ण वृंदावन के जंगल में जाते हैं यमुना माई वॉन्ट्स टू फॉलो हिम, जहां जहां कृष्ण जाते हैं तो जमुना भी उनके पीछे पीछे जाना चाहती है, इसलिए वो क्रिकेट है। कभी कभी आचार्य बताते हैं कि वृंदावन में जमुना ऐसे 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 बहुत स्पेंड करती है, और आगे देखो मथुरा आगरा से आगे एकदम स्ट्रेट चलती है प्रयागराज की तरफ। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर जमुना सी डजेंट वॉन्ट टू लीव वृंदावन, वो वृंदावन छोड़ के जाना नहीं चाहती, लेकिन क्या करे, भगवान की सेवा है, आदेश है, इसलिए आगे बहना होता है, इसलिए वो क्रिकेट जैसे बिहेव करती है। और जमुना जी का वर्णन हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं, अब मेरे गले में माला है राइट, माताओं के गले में नेकलेस, उसको मंगलसूत्र कहते हैं ना, मंगलसूत्र, माताएं मंगलसूत्र पहनती है। यमुना का मंगलसूत्र क्या है पता है, गाय बछड़े और बैल। जमुना के दोनों बैंक्स में, दोनों किनारे होते हैं ना, वहां पर गाय बैल चरते हैं, उनके सुंदर सुंदर घास खाते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि यह जमुना बाई का मंगल सूत्र है, ये गायें और बैलें, बैल जो है और ये सब। और गायें कैसी है, एज व्हाइट एज मिल्क, समटाइम द काउज आर कंपेयर्ड विद एज व्हाइट एज मदर सरस्वती, सरस्वती जितनी व्हाइट है उतने गाय व्हाइट है और उनके जो बछड़े हैं वो बछड़े कैसे, दे आर चिल्ड्रन ऑफ मूनलाइट, जो बछड़े हैं गाय के वो चंद्रमा के छोटे छोटे बच्चे हैं। समटाइम द काउज आर कंपेयर्ड लाइक अ ओशन ऑफ मिल्क, इतने गाय हैं तो कभी कभी मिल्क का ओशन बह रहा है ऐसे लगता है। एंड द काउज आर द बबल्स इन द मिल्क ओशन, और ये जो बछड़े हैं गाय के वो जो समुद्र है, मिल्क का समुद्र है, उसके ऊपर जो बबल्स आ रहे हैं वो बछड़े हैं। और बैल कौन है? बैल वो है, दे आर द टाइडल वेव्स इन द मिल्क ओशन। कैन यू इमेजिन? अगर किसी को ये मूवी वालों को सीरियसली कभी कभी अगर किसी को पति पत्नी या लवर्स को एक दूसरे के साथ ग्लोरिफिकेशन करना भी है ना, अरे मूर्खो ये शास्त्र पढ़ो। इसमें एकदम ऐसी उपमाएं दी है, ऐसे ऐसे दिया है वर्णन। इसलिए देखिए ना आप, किसी फिल्म में इसमें उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आपको क्या करना है पता है? सिर्फ व्यक्ति को चेंज करना होता है। मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब के लिए। उसमें राजकुमार एक बार जा रहा है ट्रेन से, तो उसने देखा मीना कुमारी बैठी है, मूवी है पाकिजा। देखने की जरूरत नहीं, मैं आपको जितना जरूरी है बता देता हूँ, मैंने बचपन में देखी थी वो। पाकिजा में राजकुमार जा रहा है ट्रेन से, सामने बैठी है मीना कुमारी, सो रही है और पूरा बॉडी कवर है ब्लैक ड्रेस, और बाद में ये किया था तो उसके सिर्फ पैर विजिबल थे, जो पैर है उसके वही थे। राजकुमार ने पैर को देखा, इतने सुंदर लगे उसको, उसने लिखा, एक चिट्ठी ले ली, उसमें लिखा आपके पांव कितने हसीन हैं, इसे जमीन पर मत रखना मैले हो जाएंगे। और वो चिट्ठी रख दी और आपका एक हम सफर लिख के छोड़ोगे, चला गया। मीना कुमारी ने उठाया, रोने लगी, कौन है मुझे इतना प्रेम करता है। मैंने कहा जब मीना कुमारी बूढ़ी हो गई मरने के लिए आया तो उसके पास ना राजकुमार था ना कोई था, क्योंकि ये जो शरीर है ये ज्यादा देर तक थोड़ी ना सुंदर रहने वाला है। ऐसे लगता है हमें ये माया है, लगता है हमें ये सुंदर है, लेकिन अगर आपको सुंदरता दिखती भी है, आपके पैर कितने हसीन है, वो पैरों को जो भी स्त्री है उसकी जगह पर कृष्ण को रखो, देखो वो लाइन सही निकले, एकदम सही हो जाएगी। अरे भगवान के चरणों से गंगा बहती है, जब शिवा देखते हैं कि ये तो चरणामृत है गंगा, रुको रुको रुको, जमीन में जाने से पहले मेरे सर के ऊपर रखो इसे, जाने नहीं दिया आगे। शिव जी कहते कि क्या है ना, एक्सक्यूज देते थे लोगों को, भगीरथ को कहा कि देखो भगीरथ ऐसा है, गंगा का फोर्स बहुत स्ट्रांग है, अगर वो पृथ्वी पे आ जाए ना तो सीधा होल करके पाताल में चली जाएगी, बेटर है मैं एकदम स्ट्रांग व्यक्ति हूं, मैं इसको अपने सर के ऊपर ले सकता हूं। भगीरथ ने कहा ठीक है, सही बात है आपकी। तो उसके पीछे मेन रीजन ये है कि शिवजी ने कहा कि ये चरणामृत है मेरे प्रभु का, मेरे सर के ऊपर रखो। अगर सही में किसी को हसीन पैर, सुंदर पैर देखना है ना, गोपियां कहती है चल सिया ब्रजा चारयन पशो नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शील त्रिनाकुरे सीधती तिना कलिलता मना कांतना। गोपियां कहती है भगवान आपके चरण इतने मधुर है, इतने सॉफ्ट है, सॉफ्टर देन द बटर, मक्खन है मक्खन के गोले से भी ज्यादा कृष्ण के चरण सॉफ्ट है। और गोपियां कहती है कि प्रभु आप तो चप्पल या शूज भी नहीं पहनते हैं, जब गाय चराने वृंदावन जाते हो, चलो सी यद ब्रजा, आप वृंदावन में गाय चराने जाते हो, ये जो थॉट है कि आपके चरण कमलों में कोई कंकर आके छुपे उसको टच करे, वो टच होने से पहले हमारे हृदय फट जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं हमारे हृदय, इसे कहते हैं मधुरता। तो भगवान की कृपा से राजकुमार को ऐसे चरण कमल भी दिखाए गए आगे भविष्य में। तो भगवान की जो गाय और बछड़े और बैल इतने सुंदरता से जमुना के तट पर विचरण कर रहे हैं, और जमुना माई, कभी कभी जमुना माई में आपको रेड रोजेस लाल कलर के कमल फूले हुए खिलते हुए दिखेंगे, तो आचार्यगण लिखते हैं कि लाल कलर का कमल कहाँ क्यों खिले है आज। दूसरे आचार्यगण पूछते हैं, विश्वनाथ ठाकुर पूछते हैं जीव गोस्वामी जी को, आज जमुना में लाल कलर के गुलाब क्यों खिले हैं? जीव गोस्वामी जी कहते हैं जमुना माई वो रात भर जगी है, रासलीला हो रही थी, तो रासलीला में जमुना माई को रहना है, गोपियां कृष्ण आएंगे वाटर में प्रवेश करेंगे, तो रात भर जगी है, उसकी आंखें लाल हो गई है, इसलिए कमल के फूल भी लाल हैं। तो इस प्रकार से हमारे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जमुना में जितने भी एक्वेटिक्स है, कछुआ है या मछली है, जो भी है, बीच बीच में ऐसे सर ऊपर करते हैं, देखते कि कन्हैया हार के रहा नहीं कि कन्हैया आजू बाजू में दिखता है क्या, तो वहां से खुलते हैं। जमुना के जो तट है वो क्रिस्टल से बने हुए हैं, जो स्टेयर केसेस है ना नहाने के लिए जाते हैं, वो क्रिस्टल से बने हैं। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी के समय में वो क्रिस्टल्स मेल्ट हो जाते हैं, उसका पानी बन जाता है और जमुना फ्रोज हो जाती, फ्रोजन हो जाती है। ऐसे जमुना का पानी पत्थर बन जाता है और जो किनारे के जो पत्थर है क्रिस्टल्स, उसका पानी बन जाता है। यह है वृंदावन की लीलाएं। तो जमुना माई, वन आचार्य सेज, व्हाई जमुना कलर इज ब्लू, जमुना माई का कलर नीला क्यों है? तो दूसरे आचार्य उनको उत्तर देते हैं, क्या है ना, सी इज कृष्ण माई, सी ऑलवेज थिंक्स अबाउट कृष्णा, वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती है। और जब कृष्णा रासलीला से करने के बाद वो ट्रांसेंडेंटली फटिक हो जाते हैं, वो दिव्य रूप से थक जाते हैं, तो जमुना में प्रवेश करते हैं। तो जमुना माई सो क्लेवर, तो इतने बुद्धिमान है जमुना माई। जैसे कृष्ण प्रवेश करते हैं तो कृष्ण की जो अंग कांति है वो ब्लू कलर की, नीले कलर की अंग कांति है, जमुना उसे चुरा लेती है और वही ब्लू कलर की साड़ी अपने शरीर पे डालती है। यह हमारे आचार्यगण जमुना माई का वर्णन करते हैं। राधा कुंड बताते हैं वृंदावन की रज, वृंदावन की जो डस्ट है कुछ कुछ जगह पर कैंफर से मिक्स हुई दिखती है, कुछ कुछ जगह पर अपना वो सैफरन, सैफरन में मिक्स की हुई दिखती है, और कुछ कुछ जगह पर जो सैंड है वो अगुरु के साथ मिक्स की हुई लगती है। तो जहां पर हम अलग अलग जगह जाते हैं, तो वृंदावन के डस्ट का अरोमा जो है, उसका जो फ्रेग्रेंस है, वो अलग अलग आता है। और हमारे आचार्य लिखते हैं, वृंदावन की जो ट्रीज है, हर एवरी ट्री इज अ कल्प वृक्ष। क्या वर्णन करते हैं, द ट्रीज आर एज यंग एज फोर कुमारस। अभी ट्रीज है वृंदावन के, हमारे आचार्यगण लिखते हैं, दे आर एज यंग एज फोर कुमारस। जो चतुष कुमार है वो उम्र में इतने बड़े हैं, लेकिन छोटे से बच्चे ही है। उसी प्रकार से ये वृंदावन की जो कल्प वृक्ष है वो फोर कुमारस के जैसी है, एज ब्रिलियंट एज एफुलजेंट एज सन। जो सूर्य है उसके उतने एफुलजेंट है, और ये जो कल्प वृक्ष है इनको कृष्ण की हर लीला उनके मूड को जानते हैं। जब कृष्ण किसी ग्रोव में जाना चाहते हैं तो सारे कल्प वृक्ष एक साथ आते हैं, और कल्प वृक्ष के ऊपर जो वाइन्स है, लताएं हैं, क्रिपर्स है, वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन करते हैं। हम दूसरे का गठबंधन चल रहा है वो नहीं, सारे वेली क्रिपर्स एक दूसरे का आकर गठबंधन करते हैं, और वो एक एक प्रकार का ऐसा कुटीर बनाती है, कॉटेज बनाती है। और हमारे आचार्य लिखते हैं, वो कॉटेज इतना सुंदर है, इतना डिवाइन है, कि ये जो देवताएं हैं वो भी अपने एयरप्लेन को लगता है कि ये थर्ड क्लास है। देवताओं के एयरप्लेन्स भी एक थर्ड क्लास लगते हैं, इस प्रकार से ये कल्प वृक्ष अपने वेलियों के साथ। और हमारे आचार्य लिखते हैं, हमारे गोपियां, वृंदावन की गोपियां, दे आर कंप्लीटली कंप्लीटली डिपेंडेंट एंड सर्वेंट सरेंडर टू कृष्णा। और उस उपमा का ऐसे देते हैं, कृष्णा इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग ट्री, भगवान ऐसे ताल ट्री या वो कदम्ब ट्री या तमाल ट्री के ऐसे स्ट्रॉन्ग पेड़ है, और सारी गोपियां उसी पेड़ को लिपटी हुई एम्ब्रेस करते 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 पेड़ के ऊपर से जाती है। लताओं का अपना खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता, देखा ना, अब लताओं को से निकालो जमीन पे डाल दो, रख देंगे वो, क्रीपर होता है ना वेली, उनका खुद का एग्जिस्टेंस, उसमें शक्ति होती है, लेकिन वो हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की आशा रखते हैं। तो वो कौन है, कृष्ण है स्ट्रांग ट्री, उसके ऊपर सारे गोपियां जो लताएं हैं उस पर कैसे चढ़ती है। तो ये जो वृंदावन का वर्णन है, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि वैकुंठ के सारे प्लैनेट्स भी एक साथ करो तो भी एक होते नहीं है। कभी कभी हम भागवत में वर्णन आता है, ऐसे मृग का वर्णन आता है जो जिसके नाभि में मस्क रहता है ना, तो हम लोग वर्णन क्या सुनते हैं कि ये मृग को पता नहीं है कि उसके नाभि में वो मस्क है, कस्तूरी है, और वो सब जगह पे ढूंढ रहा है। वृंदावन के जो मृग है उनको पता है कि मस्तूरी मेरे ना कस्तूरी मेरे नाभि में है, लेकिन उनका एक ही मकसद है बस, कि मेरे कस्तूरी से सारे गोवर्धन सारे वृंदावन में एक सुगंध फैल जाए, जिससे भगवान की लीलाओं में उनकी सहायता हो जाए। जो वहां की जो डियर्स है, इतने सुंदर लिखा है, जो डियर्स वेरी ब्लिसफुली वो अपने टेल को हिलाती है सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। वहां की जो वाइल्ड बफेलोज एंड वाइल्ड एलिफेंट्स, वृंदावन के जो जंगली हाँ बफेलोज है, भैंसे हैं या जंगली हाथी है, वो क्या करते हैं भगवान की सेवा पता है? जैसे हमने आपको बताया कि सांप कैसी सेवा करते हैं, तो ये हाथी और बफेलो जितने भी सुगंधित पेड़ है, जितने फ्लावर्स के ट्रीज है, उनके ब्रांचेस को उनके टिग्स को तोड़ मोड़ के रख देते हैं। पहले ही वृंदावन इतना इंटॉक्सिकेटेड है लव प्रेम और सुगंध से, उसके ऊपर से सारे चंपा चमेली इतने सारे जो फ्लावर्स है, मोगरा, इन सारे कदम्ब, इन सारों को तोड़ तोड़ के इतना एरोमेटिक इतना इंटॉक्सिकेटिंग रखते हैं कि एवरी मोमेंट उसमें व्यक्ति पागल हो जाए। यह है वृंदावन। और ऐसा वृंदावन जहां पर इवन लक्ष्मी लक्ष्मी भी वेटिंग करती है लाइन में। हमारे भक्तों ने ठाकुर लिखते हैं कि जो गोपियों का सौभाग्य है कृष्ण को आलिंगन करना, ये तो अप्सराओं की तो छोड़ो, वैकुंठ प्लैनेट्स के लोगों के लिए भी वो अवेलेबल नहीं है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम उसी गोलोक वृंदावन में बैठे हैं, क्योंकि सुंदराचल ऐसी जगह है, गोपियां रथ यात्रा में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ में बिठाकर अपने हृदय में ऐसी लीला करते हैं और उनको कहते हैं कि आप कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं, आपकी सर के ऊपर इतना बड़ा हेलमेट है, इतने सोल्जर्स है, एलिफेंट्स है, हॉर्सेस है। अरे वृंदावन में ऐसा तो कुछ होता नहीं है, वृंदावन में आप सिंपल एक बांसुरी बजाते हैं जमुना के तट पर, और वहां पर आप जब बांसुरी बजाते हो तो सिर्फ गोपियां और गोपास पागल नहीं होते, वहां के कीड़े मकोड़े से लेकर पेड़ पौधे से लेकर वो भी कृष्ण की लीला में नृत्य करते हैं। तो आप ऐसे वृंदावन में आइए। तो ये सब वृंदावन में भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, इतना सारा डिस्क्रिप्शन वृंदावन का है, हमें कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ अपने आचार्यों की, गुरुवर्य, उनके चरणों में बैठकर उनके साथ जो बताए, उनके जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करो, अपने आप वृंदावन में प्रवेश हो जाता है, जबरदस्ती से होता नहीं। अब मेरा भी एक टिकट कर दो, हाँ मैं आ रहा हूँ गोलोक वृंदावन में, बस ऐसी बॉडी खत्म हो जाए, ये शरीर खत्म हो जाने के बाद अपना वहां एक सीट रख दो भैया, रासलीला में एक सीट अपने लिए रख दो, ऐसा नहीं होता। वृंदावन की बहुत सारी लीलाएं, 5 मिनट मेरे बचे हैं, उसी में मैं जितना हो कंप्लीट कर लेता हूं। तो आगे भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, ये सब छोड़ता कहीं नहीं जाऊं, कैन इमेजिन। अरे जो देवी देवताओं के लिए, सिद्ध पुरुष महात्माओं के लिए जो करोड़ों सालों से तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है प्राप्त करना, और हमें इजिली मिल गए, तो ये सब छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। लेकिन अपना माइंड इतना बेकार है, जैसे हम बंबई में वापस जाते हैं, यूट्यूब में अलग अलग चीजें आ जाती है, फेसबुक में अलग अलग चीजें आ जाती है, तो ये सब छोड़कर हम लोग बहुत सारी जगह घूमते हैं। घूमने के लिए क्या क्या है ये दुनिया में, सोचो ना। अगर आप सोशल मीडिया और जो इंटरनेट देखो, एक जितने गोपी लायल है कृष्ण से, उतने ही हम लोग लायल माया देवी के। भौतिक दुनिया का अरेंजमेंट ही ऐसा, एवरी मोमेंट देयर इज अ स्ट्रगल। अगर हम लोग खुद होकर प्रयास नहीं करें अपने आप को शुद्ध रखने के लिए, आचार्यों के चरणों में रखने के लिए, ये माया उड़ा के लेकर जाएगी। तो भक्तिवत्सल ठाकुर कहते हैं, अरे ऐसे श्याम सुंदर, ऐसे श्याम सुंदर कि सारे देवी देवताओं को, जितने भी मेल्स है उनका सब हैंडसमनेस, सारे मेल्स का हैंडसमनेस और सारे फीमेल्स का ब्यूटीनेस एक साथ जमा करो, उसका एक समुद्र बना दो। किसका समुद्र बनाएंगे? हैंडसमनेस मेल्स का और ब्यूटी फीमेल्स का, दोनों एक साथ डालो, एक समुद्र बनाओ, उसको चैनिंग शुरू करो। जैसे अगर दूध दही मक्खन अगर क्वालिटी होता है, उसका बटर भी बहुत सुंदर रहता है ना, तो ये सारे बेस्ट क्वालिटी के जितने भी अवतार है, विष्णु, विष्णु अवतार, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, जितने भी देवता है, सबको एक साथ रखो, चरणिंग करो, और उसमें से फाइनली जो नेक्टर ऊपर आएगा ना विष्णुचर ठाकुर दे, वो है कृष्ण। तो ऑफ कोर्स वी डोंट डिनाय, हम लोग मानते हैं कि सारे देवताओं में सुंदरता है, विष्णु में सुंदरता है, सारे अवतारों में सुंदरता है, लेकिन इन सब को जो चर्निंग करने के बाद जो नेक्टर जो बटर ऊपर आएगा वो हमारे श्याम सुंदर कृष्ण है, ये वृंदावन चंद्र है। तो ऐसे वृंदावन चंद्र के चरणों में अगर हमें सेवा करने की अगर ये मिल जाए तो ये सब छोड़ के कहां जाएंगे। इसलिए भक्तिवनोद ठाकुर लास्ट लाइन में मिलते हैं, राधा कुंद सुंदर, आप बस कृपा करो कि मैं आपके चरणों में ही रहूं, आपके भक्तों के चरणों में रहूं, इस प्रकार से सेवा करूं। तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी ट्रेन है अभी 11 बजे की ट्रेन है यहीं से, तो मुझे जाना होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारे वरिष्ठ भक्तों का जो यात्रा मैनेज कर रहे हैं, बहुत आभारी हूँ आप सबका। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज चैतन्य महाप्रभु, तो मुझे ये जगन्नाथपुरी धाम में ये अवसर मिला है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, फिर भी ये मुझे आज अवसर मिला है। अंतिम दिन है, हम किचन का लंच कुकिंग कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी तो मैंने कहा ठीक है, अंतिम दिन भक्तों के संग में थोड़ा चैतन्य चरितामृत के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे संक्षेप में। मैं पहली बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ यात्रा में आया तो जगन्नाथ पुरी में, वो था 1999, रथ यात्रा था। साउथ इंडिया यात्रा के तुरंत बाद 1999 में रथ यात्रा लेके आए थे परम पूज्य राधानाथ महाराज। 250 लोग थे बस, ये हॉल में सब लोग आ गए थे। और तभी भक्ति वैभव पुरी महाराज ने हम सबको यहाँ पे प्रसाद वितरण किया था, हम सबका प्रसाद भी ही हो गया था लंच प्रसाद। और दर्शन खुले थे, वो कहने लगे सब भक्त नहीं ले रहे थे, नंदलाल उन्होंने बताया आपको, तो मैं भी उन सभी जो भक्त लोग आए थे वो यात्रा में, तो यहीं पे बैठ के वो यात्रा में था। और महाराज पर्सनली सबको एंकरेज करते, लीजिए लीजिए प्रसाद, राधा वृंदावन चंद्र बहुत प्रसन्न होंगे आप, वैष्णव लोग प्रसाद ले रहे देख करके। दर्शन खुले थे, फिर हम लोग सब लोग उनके सानिध्य में प्रसाद लिए, महाराज जी ने कथा किया, उन्होंने भी कुछ शब्द बोले, तो बहुत सुंदर यात्रा था। और हम सब मिलके गुंडीचा मार्जन भी किए थे एक साथ में, तो मैं सोचा कि संक्षेप में मैं गुंडीचा मार्जन के ऊपर चर्चा करूँगा। हमने सब ने अभी शिवराम प्रभु जी से वृंदावन की मधुर लीला सुनी, परंतु वृंदावन का जो मधुर भाव है उसको हमें यदि पाना है, उसको यदि समझना भी है, तो हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे गुंडीचा मार्जन किया ये सिखाने के लिए कि किस तरह से हम अपना हृदय शुद्ध कर सकते हैं, हृदय का शोधन। वास्तव में यहाँ पे हम आए हैं, हमें अपना यहाँ से जो लेसन लेना है यात्रा से, कि हम अपना हमें उत्साह बढ़ाना है अपना हृदय को शुद्ध करने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर भी भजन में कहे हैं कि गोस्वामी के शरण में लेके, विषया छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन तबे हम हेरी वो श्री वृंदावन। कि जब मेरा हृदय विषय वासना से शुद्ध हो जाएगा तभी मैं वृंदावन के भाव को समझ पाऊंगा। ग्रहण करना तो दूर की बात है, उसको समझना भी बहुत अत्यंत कठिन है। तो हमें उत्साह बढ़ाना है अपने हृदय को शुद्ध करने का। तो चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा से 2 दिन पहले सर्वभाव भट्टाचार्य, काशी मिश्रा और तुलसी पड़ीचा, पड़ीचा बोले तो सुपरिटेंडेंट, जो टेम्पल के मैनेजर, जगन्नाथपुरी के टेम्पल के मैनेजर थे, और काशी मिश्रा जो थे वो हेड प्रीस्ट थे, और सर्वभाव भट्टाचार्य राजगुरु थे। ये तीनों जगन्नाथ मंदिर के व्यवस्था सेवा पूजा देखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन तीनों को बुलाया और कहने लगे कि हम गुंडीचा मार्जन की सेवा करना चाहते हैं, मंदिर का पूरा जो है मार्जन करना चाहते हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अलाउ कीजिए ये सेवा करने के लिए। तो तीन जन पाशे प्रभु हासिया कहिला, तीन तीन जन है, सर्वभौम भट्टाचार्य, काशी मिश्रा, तुलसी पड़ीचा। तीन जन पाशे प्रभु हासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नीला। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे सेवा मांग के ले रहे हैं, क्या मुझे ये सेवा का अवसर दीजिए। देखिए वास्तव में सेवा जो है, सेवा का अवसर ये वास्तव में बहुत दुर्लभ है। सेवक अफसर मधवेंद्र पुरी को जब गोपाल ने सेवक अफसर दिया तो उन्होंने वो सेवा के अफसर के एक धन के समान उन्होंने उसको प्रतीत किया कि ये वास्तव में मेरा धन है। तो गौरांग गुरु कहते हैं कि यदि हमको कोई सेवा कहता है कि सेवा कीजिए, हमको सेवा गन की तरह लगता है, अरे बाप रे। तो सेवा गन नहीं है, सेवा एक धन है। तो धन के तरीके, धन के वास्तव हमें सेवा को देखना चाहिए, सेवा के अवसर को। तो चैतन्य महाप्रभु उस धन को मांग रहे हैं कि आप मुझे अवसर दीजिए सेवा करने का, गुंडीचा मंदिर का मार्जन करने का। तो कहने लगे, हम सब आपके सेवक हैं, आपकी जो भी इच्छा है वो हमारा कर्तव्य है। और विशेष रूप से महाराज प्रताप रुद्र ने कहा है कि जो भी महाप्रभु की इच्छा हो उनको तुरंत पूर्ण कीजिए उसको। तुम्हारे योग्य सेवन है मंदिर मर्जन, यही एक लीला कर ये तुम्हारा मन। तो कहने लगे, मंदिर को पोछना धोना ये आपके लिए योग्य सेवा नहीं है, परंतु फिर भी यदि आपकी इच्छा है, आप दूसरों को शिक्षा देने के लिए एक लीला करेंगे। ऐसा सर्वभाव भट्टाचार्य उन्होंने कहा। तो अभी इतना बड़ा मंदिर साफ करना है, कितना झाड़ू लगेगा वो कह सकता है? कोई गेस? देखो, इतना बड़ा मंदिर को अगर सफाई करना है, आप सोचिए, छोटे घर में एक दो झाड़ू तो रखते हैं हम लोग, है ना, गुंडीचा मंदिर। तो तुरंत जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा व्यक्त की, 100 झाड़ू और 100 बाल्टी, बाल्टी बोले तो मटका, मटका 100 मटका को तुरंत उन्होंने अरेंजमेंट किया। और अगले दिन चैतन्य महाप्रभु अपने सभी निजी भक्तगण को लेकर के गुंडीचा मार्जिन में आ गए, गुंडीचा मंदिर में आ गए। अपने हाथों से उन्होंने चंदन और माला सभी भक्तों को समर्पण किया, और अपने हाथों से चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के हाथों में झाड़ू दिए। श्री हस्ते दिला सबारे एक एक मार्जनी, सब गण लिया प्रभु चलीला आपनी। सब भक्तों के हाथ में एक एक झाड़ू दिया। तो रूप गोस्वामी ने लिखा है, अनार्पित अनार्पित चरिम चर्या करुणावती ना कलो स्मर्पयितम उन्नत उज्जवल रसाम भक्ति श्रियम। चैतन्य महाप्रभु वो देने के लिए आए हैं अनार्पित, जो आज तक किसी ने नहीं दिया है अनार्पित, उसको क्या समर्पित करने आए हैं, अनार्पित चरिम चिरा। तो व्हाट नो अदर इनकार्नेशन हैज गिवन, जो किसी अवतार ने नहीं दिया है, वो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। वो क्या है? झाड़ू। किसी अवतार ने झाड़ू दिया है भक्तों के हाथ में? आपने पढ़ा है कभी, है ना, आपने पढ़ा कभी किसी अवतार ने, रामचंद्र जी ने किसी भक्त के हाथ में झाड़ू दिया हो, या नरसिंह देव ने किसी भक्त के हाथ में झाड़ू दिया हो, या वामन देव ने? कोई अवतार की कोई ऐसी कथा नहीं कि उन्होंने भक्तों के हाथ में झाड़ू दिया हो। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत विशेष अवतार है, बिकॉज ही इज गिविंग अस द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द हार्ट, हृदय को शुद्ध करने का। दैट ब्रूम तो झाड़ू है, दैट इज द प्रोसेस टू क्लीन द हार्ट, हृदय को शोधन करने के लिए एक तरीका है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों के हाथ में झाड़ू दिया, 100 झाड़ू बांट दिए, नहीं 99 बांटे, अपने हाथ में भी एक लिया। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु यहां सिखा रहे हैं कि स्वयं ये जो है ये सेवा अपने आचरण से सिखाएंगे, किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह का सेवा का भाव, हृदय किस तरह से शुद्ध होगा और किस तरह से हमें प्रयास करना है, वो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखाते हैं। तो इस तरह से सभी भक्तों में दिया, हाथों में झाड़ू दिया, और सभी भक्त सफाई करने लगे। कुछ लोग मंदिर के बाहर प्रांगण में, अंदर जो कीर्तन हॉल है जगमोहन, वहां पे इस तरह से अलग अलग स्थान पे सभी भक्त सफाई करने लगे। उसके बाद चारिदी के शत भक्त सम्मार्जन करे, तो चारों तरफ 100 भक्त, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी मार्जन कर रहे थे, अपनी शोधन प्रभु शिखन सबारे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु बहुत उत्साह से मंदिर का मार्जन कर रहे थे, किसके लिए? अपनी शोधन प्रभु शिखन सबारे, सबको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी मंदिर का मार्जन कर रहे थे। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार बहुत विशेष है क्योंकि वो स्वयं अपने आचरण से हमको सिखाते हैं। तो बताया गया है चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में सोचने लगे कि मैं अवतरित होऊंगा तो उनका क्या विचार था? अपने करी मु भक्त भाव अंगीकारे, अपने आचारी भक्ति सिखाई मु सबारे। मैं खुद जो है एक भक्त का भाव ग्रहण करूंगा और अपने आचरण से मैं ये मंदिर का मार्जन करना सिखाऊंगा। अपने न कहले धर्म सिखाना न आए, यदि हम वास्तव में स्वयं आचरण नहीं कर सकते हैं, अपने न कहले धर्म सिखाना न आए, दूसरों को क्या सिखा पाएंगे? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं के उदाहरण से भक्तों को सिखा रहे हैं। तो ये बहुत विशेष बात है। हम एक बार गोपीनाथ मंदिर में एक भक्त अपने छोटे बच्चे को लेके आए, छोटा लड़का था, उनको कहा प्रभुपाद को दंडवत करो। वो देखने लगा ऐसा, दंडवत करो, दंडवत नहीं कर रहा था, इधर उधर देख रहा था चारों तरफ। तो उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ ली दंडवत कराने के लिए, उसने गर्दन और टाइट कर दी अपनी, राइट। तो दंडवत कर ही नहीं रहा था काफी देर जो है, तो पिताजी थोड़ा फ्रस्ट्रेट ही हो गए, बोले ये तो दंडवत नहीं करने वाला, छोड़ो मैं तो दंडवत कर दूं प्रभुपाद को। तो उन्होंने प्रभुपाद को दंडवत मारा और प्रणति मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो देखने लगा पिताजी को, थोड़ी देर बाद वो भी दंडवत कर दिया। तो अपने आचारी भक्ति सिखाई मु सबारे, वास्तव में यदि अपना आचरण से ही हम भक्ति सिखा सकते हैं, गीता भागवत ही कहती है अपने न कहले धर्म सिखाना न है, यदि खुद का आचरण ठीक नहीं तो दूसरों को क्या सिखा पाएंगे? इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से किस तरह से हृदय का शोधन करना है वो सिखाते हैं। प्रेमोला से शोधन लयन कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। प्रेमो उल्लासेन शोधेन लयेन कृष्ण नाम, बहुत सुंदर श्लोक है ये। बहुत प्रेम से बहुत उल्लास से कृष्ण का नाम लेते हुए मंदिर का मार्जन कर रहे थे। उनका हृदय जो है उल्लास से भरा हुआ था। ऐसा नहीं कि सेवा कब खत्म होगी, बहुत कठिन परिस्थिति से जा रहा हूं, इस तरह से कई बार लगता है ये सेवा जैसे अनएंडिंग है, कुछ पार नहीं दिखाई दे रहा। बहुत उल्लास से हृदय जो है उनका उल्लास से भरा हुआ था, प्रेम से भरा हुआ था। भगवान का नाम का निरंतर उच्चारण कर रहे थे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो भक्तगण भी जब देखे महाप्रभु को तो उसी तरह तुरंत वो भी सभी भक्त लोग भी उतने ही उल्लास से भगवान का नाम उच्चारण करने लगे और मंदिर का मार्जन करने लगे। तो देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, मुख से भगवान का नाम, हाथ से भगवान की सेवा। एक उत्तर भारत में एक भगवान रामचंद्र का भजन है, ट्रेडिशनल भजन है, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सो इस तरह से एक भजन है, मैं एक ही आपको स्टैंजा बताया हूं। मुख में हो राम नाम, अब यदि मुख से हम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, हाथ से राम जी की सेवा कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके हमेशा साथ में हैं। तो इस तरह से बहुत उल्लास से बहुत प्रेम से चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए मार्जन कर रहे थे। तो एक बार कथा है, श्री चैतन्य मठ मायापुर में एक बार एक प्रोफेसर, एक कॉलेज के प्रोफेसर आए। वो कॉलेज के प्रोफेसर आए तो उन्होंने श्री भक्तिदान सरस्वती ठाकुर के कुछ शिष्यों से मिले जो के शास्त्र के बहुत ज्ञाता थे, बहुत पंडित थे। तो उन्होंने, उनकी इच्छा हुई कि मैं भी, वैसे तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ, फिलॉसफी वगैरह, पर मुझे संस्कृत नहीं आता है और शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो शिला सरस्वती ठाकुर से कहने लगे कि आपके किसी शिष्य को बोलिए जो बहुत शास्त्र में प्रवीण हो, मुझे शास्त्र सिखाने, संस्कृत सिखाने के लिए। तो सरस्वती ठाकुर ने कहा आप जाइए रामदास जी से मिलिए। रामदास तो चले गए, बोले कहा रामदास कहाँ मिलेंगे, पूछने लगेंगे। वो बोले मंदिर का जो बगीचा है वहां मिलेंगे। मंदिर का बगीचा, मंदिर के बगीचा में वो है रामदास जी, वो अपना गार्डनिंग कर रहे थे और पूरे उनके कपड़े जो है मिट्टी मिट्टी लगी हुई थी। तो उन्होंने सोचने लगे अरे ये संस्कृत सिखाएंगे, ये ऐसे तो बहुत लग नहीं रहे कि बहुत बड़े पंडित हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी लगी हुई है कपड़ों पे। तो वो थोड़ा अचंभित हो गए, पूछने लगे यही रामदास? हाँ यही है। तो उनके पास हिचकते हुए गए तो कहने लगे कि आप मुझे थोड़ा संस्कृत वगैरह सिखाइए, शास्त्र सिखाइए। रामदास जी और अचंभित हो गए इनसे भी ज्यादा, कहते मुझे तो अपना नाम भी लिखना नहीं आता, हस्ताक्षर भी करना नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं आपको कहां से शास्त्र सिखाऊंगा। तो ये दोबारा वापिस आ गए तो उनको कहा जाकर भक्तिदास ठाकुर को कि आप उनके पास भेज दिए, उनको तो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता। तो बोले क्या कर रहे थे वो जब आप उनसे मिले, क्या कर रहे थे? बगीचे का सेवा कर रहे थे, पौधा वगैरह जो वीड वगैरह वो निकालना और थोड़ा खाद वाद डालना, फूल तोड़ना, फलों के वृक्ष, उस तरह से बगीचे में सेवा कर रहे थे और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे। सेवा करते करते निरंतर उनके मुख से भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा था। तो सरस्वती ठाकुर के देखिए ये मैंने पहले आपको सभी शास्त्रों का क्या फल है ये आपको दिखाने के लिए भेजा, हाथ से सेवा भगवान का और मुख से उनका नाम का उच्चारण। तो ले देखिए सभी शास्त्रों का जो मर्म है वो इन्होंने समझ लिया है रामदास जी ने। तो पहले आप सभी शास्त्रों का मर्म समझिए, पंडित तो बन जाएंगे लेकिन भगवान की भक्ति ना भी मिले। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे सिखा रहे हैं अपना अपने हाथ से किस तरह से हृदय को शोधन किया जाएगा। और बहुत प्रेम और बहुत उल्लास से भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए मंदिर का शोधन कर रहे हैं। धूलि धूसर तनु देखी ते शोभन, कहां कहां अश्रु जले करे सम्मार्जन। और चैतन्य महाप्रभु के शरीर में धूलि, जब धूल तो उड़ती है जब सफाई करते हैं, तो उनके शरीर में श्रीरंग में धूल लगी हुई थी। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बहुत सुंदर लग रहे हैं महाप्रभु। जैसे भक्तगण कभी सेवा कर रहे हैं उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं किसी भी प्रकार से, तो वास्तव में अलंकार है वो, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं धाम में कहीं दंडवत करेंगे तो ये सब गंदा हो जाएगा कपड़ा, या कोई सेवा करेंगे तो थोड़ा ध्यान से हम थोड़ा ध्यान रखते हैं कि हमारा थोड़ा कपड़ा थोड़ा साफ रहे, लेकिन सेवा करते हुए कुछ वस्त्र गंदे हो जाए, ऐसे हो जाए, वास्तव में बहुत बड़ा अलंकार है। एक बार एक भक्त ने वृंदावन में दंडवत किया, गौरकिशोर दत्त बाबा जी महाराज थे, और उनके पूरे कपड़े पे धूली लग गई, तो तुरंत वो झाड़ने लगे फटाफट फटाफट, कहीं स्टेन नहीं पकड़ ले, थोड़ा नया एकदम कपड़ा है सफेद या जो भी नई साड़ी है, तो स्टेन नहीं पकड़े, तुरंत झाड़ने लगे। तो गौरकिशोर दत्त बाबा जी महाराज बोले क्या कर रहे हो मूर्ख, कितने कोटि जन्मों के बाद धाम की धूली जो है तुम्हें प्राप्त हुई है, तुम्हारे अंग पे लगी है, तुम उसको ऐसे झाड़ रहे हो? किसी को बहुत हीरे मोती प्राप्त हो जाए और ऐसा तुरंत कोई फेंकता है क्या ऐसा, है ना। तो इस तरह से वो कहने लगे ये देखिए मूर्ख हो, ये जो तुम्हें धाम की रज प्राप्त हुई है ये साधारण नहीं है, बहुत विशेष है, कोटि कोटि जन्मों के बाद प्राप्त हुई है, इसी इस तरह से मत फेंको, मत झाड़ो इस तरह से इसको। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो धूल उड़ी गुंडीचा मार्जन करते, उनका शरीर बहुत अलंकृत हो गया, बहुत सुंदर लगने लगे धाम की धूल से। और भोग मंदिर, जगमोहन, प्रांगण, सिंहासन सबका शोधन कर रहे हैं भक्त लोग, चैतन्य महाप्रभु सिंहासन का शोधन कर रहे हैं। तो सब जब जो सब धूली धूसर तृण उठा करके, अभी झाड़ू था उसको बाहर फेंकना है, तो डस्ट कलेक्टर नहीं भूल गए थे शायद भगवान, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपना वस्त्र लिया, अपना बाहर वस्त्र, उसमें सभी हाथ से धूली को उठा के अपने वस्त्र में डाला, और मंदिर के प्रांगण के बाहर जाकर तो सभी भक्तों ने देखा, देखिए अपना कपड़ा ले लिया, उसको डस्ट कलेक्टर बना लिया, उसको बना करके बाहर मंदिर के डालने लगे सभी भक्तों ने अपना फटाफट, जो भी उनके पास गमछा वमछा उतरी थी जो भी था कपड़ा लिया फटाफट, और इसी तरह से सब धूलि तृण लेकर के मंदिर के बाहर जाके डालने लगे। सो चैतन्य महाप्रभु देखने लगे भक्त लोग लेके आ रहे हैं धूलि दूसर बाहर डाल रहे हैं, तो कहने लगे प्रभु कहे के कट करिया छ समर्जन तृण धूलि देखी लई जानीबा परिश्रम। कहने लगे के कौन कितना सेवा किया है, मैं देखूंगा कि कितना धूलि कलेक्ट किया है, सब लोग अपना अपना स्टैक लगाओ उधर नंबर लिखो, ऐसा तो मालूम चलेगा कि कौन कितना सेवा किया है, कितने धूलि आपने लेके आए हैं कलेक्ट करके, उससे मालूम चलेगा कितना परिश्रम किया है आपने। देखिए वैसे तो वास्तव में हम जानते हैं कि किस तरह से भक्ति में भाव सबसे महत्वपूर्ण है, किस भाव से सेवा की जाए, परंतु चैतन्य महाप्रभु हमको ये बता रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं कि भाव, एक्चुअल सेवा भी तो होनी चाहिए, सिर्फ भाव से तो काम नहीं होगा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मैं देखूंगा कि कितना आपने पसीना बना बहाया है। सो चैतन्य महाप्रभु वॉन्ट्स टू सी हाउ मच वी स्वेट हार्ड, देयरफॉर टू क्लीन द हार्ट इज नॉट अ इजी थिंग। समटाइम वी थिंक, हम सोचते हैं कि भक्ति मतलब एकदम आराम से, वो नहीं कुछ ज्यादा प्रयास नहीं, हृदय को यदि शुद्ध करना है तो उसके लिए भी बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, आसान नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु लीला के थ्रू बता रहे हैं कि हमें बहुत परिश्रम करना है, यू हैव टू रियली स्वेट हार्ड टू क्लीन द हार्ट, इट्स नॉट इजी थिंग। श्रुति वर्ण दना दिना यस्या कृपा जनने बलवत भजने न विना। तो कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, भगवान की कृपा बहुत धन बहुत संपत्ति बहुत पांडित्य से नहीं आएगी जब तक हम बहुत बलवत भजन मतलब भक्ति में बहुत हृदय से, जैसे भक्ति व्यक्ति बाहर मुंबई में देखते हैं 2 घंटा सुबह शाम, 4-4 घंटा ट्रैवल, 10 घंटा ऑफिस में काम, 14-15 घंटे जो बिताते हैं, बहुत लोग ऐसे है ना, तो कितना परिश्रम करते हैं, तो भक्ति में भी बहुत परिश्रम की आवश्यकता है, हृदय ऐसा आसानी से उसका शुद्ध नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं सबका परिश्रम देखूंगा आपने कितना परिश्रम किया है, कितना धूलि धूसर इकट्ठा किया है। इस तरह से सब भक्तों का उत्साह और बढ़ गया और थोड़ा परिश्रम करने लगे जो है मंदिर के मार्जन में। तो इस तरह से एक बार क्लीनिंग हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम दोबारा एक बार और क्लीनिंग करेंगे झाड़ू से। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहा आप उधर जाइए, आप उधर जाइए, आप उधर जाइए, आप दीवार आप छत साफ कीजिए, सबको बांट दिया सेवा। एमत अभ्यंतर करीला मर्जन पुनः सभा करे दीदा करिया बंटन। अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु सबको खुद बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो जिसके मन में आए वो करते रहिए। सेवा में नियम और व्यवस्था का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो देखिए सब लोग चाहेंगे कि महाप्रभु के आजू बाजू ही रहे, है ना, तो आधा तो काम छूट ही जाएगा फिर, है ना। अगर चैतन्य महाप्रभु टेंपल हॉल कर रहे हैं, सब लोग सोचेंगे टेंपल हॉल में रहे, तो टेंपल हॉल के बाहर का जो प्रांगण है और दूसरे छोटे मंदिर हैं साइड की जगह है उसको कौन करेगा। तो इसलिए महाप्रभु का चलिए आप बाहर, आप इधर आप उधर, इस तरह से सबको सेवा महाप्रभु ने खुद बांट के दिया, सेवा स्केड्यूल बना दिया, सर्विस एलोकेशन कर दिया। देखिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जिसके जो भावना है वो करिए, जहाँ भी जिसको लगे ऐसा कीजिए, नहीं। सेवा का नियम है कि थोड़ा उसमें बुद्धि से व्यवस्था से थोड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और फिर सभी लोग दोबारा सेवा करने लगे और अभी मंदिर अच्छे से मार्जन हो गया, झाड़ू एकदम क्लीन हो गया, कोई भी स्थूल धूलि और तृण नहीं दिखाई दे रहा था। तो भी चैतन्य महाप्रभु, अच्छा 100 घड़े भी आए थे, घड़े भर के लोग इंतजार कर रहे थे कब हमें आदेश मिलेगा, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, तो भी दोबारा पानी से मार्जन होना शुरू हुआ। अर्शत जन शत घटे जल भरी प्रथम लय अछे काल अपेक्षा करी, तो अपेक्षा कर रहे थे कि जब महाप्रभु कहेंगे हम अपना सेवा शुरू करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को कहा अभी क्या कीजिए, सबसे पहले छत को धोइए, वो पानी जो दीवार को धोएगा, फिर पानी फर्श को धोएगा, है ना। देखिए इसमें भी महाप्रभु जो है बहुत बुद्धिमता से, बहुत व्यवस्था से सेवा करा रहे हैं। बोले पानी फेंकिए छत के ऊपर, वही पानी दीवार और फर्श को धोएगा। तो सभी भक्तों ने इस तरह से प्रक्षालन शुरू किया। तो चारों तरफ प्रक्षालन हो रहा था, भक्त लोग घड़ा, इंद्रद्युम्न सरोवर है यहाँ पे, वहां से घड़ा भर भर के पानी का ला रहे थे और पानी घड़ा दे रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने निज वस्त्र से उसको गीला करके चारों तरफ पोछा करने लगे, वस्त्र को गीला करके, वही वस्त्र को जिसमें पहले धूली धूसर इकट्ठा किए थे। तो कहा गया है कि किसी भक्त को भी जब भी कहीं पे पानी चाहिए होता था, जो भक्त मार्जन करने का, यहां पानी डालो अभी, इस तरह से कृष्ण कृष्ण कही करे घटेरा प्रार्थन, तो जोर से चिल्लाता था कृष्णा कृष्णा
कृष्णा।
तो जब वो कोई भक्त भी कहता था कृष्ण कृष्ण उच्चारण करता था, तो दूसरा भक्त एक मटका घड़ा का पानी लेके आ जाता था वहां पे, है ना। तो कृष्ण कृष्ण बोलते थे तो घड़े एक घट पानी आके वहां पे डाल देते थे। तो और पानी डालते हुए वो भी बोलता था कृष्णा कृष्णा, ऐसा क्या डिलीवरी हो गया आपका काम हो गया, है ना। कृष्ण कृष्ण कही करे घटेरा प्रार्थन, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समार्जन। तो इस तरह से तो कहा गया है ये ही कहे सही कहे कृष्ण नामे, तो भगवान कृष्ण के नाम को छोड़कर और कुछ ध्वनि नहीं थी, बस सब लोग बोल रहे कृष्ण कृष्ण, और तुरंत भाग के कृष्ण कृष्ण बोल करके एक मटका जो है जल का डाल देते थे, इस तरह से समार्जन चल रहा था। तो देखिए भगवान कृष्ण का जो नाम है वो एब्सोल्यूट है, उससे सब संकेत हो सकता है। आप कृष्ण कृष्ण बोलेंगे दूसरे व्यक्ति समझ सकते हैं आपको क्या चाहिए, भगवान कृष्ण के नाम में सब कुछ समावेश है, कृष्ण इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, समम बोनम। तो इस तरह से सब संकेत सब व्यवहार भगवान कृष्ण के नाम से ही चल रहा था और कुछ ध्वनि नहीं हो रही थी। प्रेम आवेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, तो चैतन्य महाप्रभु तो बहुत आवेश में थे, तो बहुत उच्च स्वर से बहुत प्रेम में कृष्ण कृष्ण नाम निरंतर ले रहे थे। प्रेम आवेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, इकेले प्रेम आवेश करे शत जनेरा काम। तो देखिए प्रेम में अविष्ट थे, लेकिन अब्सॉर्प्शन डजंट मीन इनएक्शन। कभी हम सोचते हैं कि ये भक्त जो है बहुत अविष्ट है, तो कुछ प्रैक्टिकल काम नहीं कर पाएगा ना, ये प्रभु जी तो एकदम मतलब लीन है, लीन मतलब अभी कुछ प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि पूरे आवेश में थे भगवान के प्रेम में, लेकिन अकेले 100 जनों का काम कर रहे थे, अकेले प्रेमावेश करें शत जनेरा काम, बाकी जितने भक्त कर रहे थे उतना चैतन्य महाप्रभु अकेला कर रहे थे, इतने आवेश में इतने प्रेम में। देखिए उनका उत्साह चैतन्य महाप्रभु का, अपने आचरण से महाप्रभु सिखा रहे हैं। और देखते थे कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से मार्जन कर रहा है तो उसके थोड़ा कमर पे थपाकी देते थे, ऐसा आकर के महाप्रभु स्वयं भाला कर्म देखी तारे करे प्रशंसन कहते थे, बहुत अच्छा ऐसा थम्स अप मैसेज भेज देते थे, जिस तरह से भी वेरी गुड। और यदि कोई ठीक से नहीं कर रहा था, पीछे छोड़ रहा था, मने ना मेरी ले करे पवित्र भ्रत्सन, और महाप्रभु देखते थे कि ठीक से नहीं कर रहा तो उसको पवित्र भ्रत्सन करते थे। पवित्र भ्रत्सन का अर्थ है उसका हृदय बिना तोड़े उसको उसको फीडबैक देते थे, लेकिन इस तरह से कि उनको हृदय को ठेस ना लगे, पवित्र भ्रत्सन। लेकिन बहुत बड़ी किसी को करेक्ट भी करना हो तो वो भी बहुत ठीक तरीके से करना चाहिए, उसका हृदय ना टूट जाए। और किसी हमारे हृदय में कुछ गलत से या बहुत हम लोग कभी कभी किसी को फीडबैक देते हैं तो बहुत कटु शब्द बोल देते हैं जो हृदय को चुभ जाते हैं, ऐसे नहीं। तो महाप्रभु किसी को फीडबैक भी देते थे कि आपको ये ठीक नहीं कर रहे, आपको ठीक से करना चाहिए, इस तरह से कहते थे कि व्यक्ति और उत्साहित हो जाता था। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी कहते हैं, यद्यपि हम कभी कभी उनसे पूछते हैं कि ये भक्त को हमें सुधारना है, उसे किस तरह से फीडबैक दी जाए, तो महाराज यही कहते हैं कि डू समथिंग टू इंस्पायर हिम, देखिए कि वो डिस्करेज ना हो जाए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु पवित्र भत्सन किए और कहने लगे कि आप सिखाइए इनको, जो अच्छे से कर रहे हैं उनको ये सिखाइए। तो इस तरह से महाप्रभु ने सभी भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मार्जन किया। कहा गया है गुंडीचा के मार्जन के बाद गुंडीचा बहुत स्निग्ध हो गया, शीतल हो गया, ऐसे लगा कि महाप्रभु ने अपना मन बाहर लाके धर दिया है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गुंडीचा मार्जन की जो लीला सुनता है, पापी व्यक्ति को भी कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त हो जाता है गुंडीचा मार्जन लीला सुनने से। जय श्री गौरंग महाप्रभु की,
जय
श्री प्रभुपाद की,
जय
गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।
भगवान का दर्शन तो है ही वहां पे, लेकिन आपको कम से कम 1000-2000 की दक्षिणा देनी होगी।
तो ये फॉर्म किस तरह है?
अच्छा,